एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे जर्मन दार्शनिक के विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दर्शन में जैसे एक भूचाल सा आ जाता है, मार्टिन हाइडेगर।
जी हाँ, हाइडेगर 20वीं सदी के शायद सबसे प्रभावशाली और उतने ही विवादास्पद विचारकों में से एक।
बिल्कुल, उन्होंने तो पश्चिमी सोच की जो 2500 साल पुरानी परंपरा थी उसी पर सवालिया निशान लगा दिया और हमें अपने होने, अपनी भाषा, कला, तकनीक, इन सब के बारे में बिल्कुल नए ढंग से सोचने को मजबूर किया।
सही का, और उनके सवाल ऐसे हैं ना जो आज भी हमें कचोटते हैं। मतलब अस्तित्व का क्या मतलब है? क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस एक भीड़ की तरह चले जा रहे हैं? और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमें कहाँ ले जा रही है?
हाँ, ये सवाल तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं।
बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी स्रोत हमारे पास हैं उनकी रोशनी में हाइडेगर के जीवन को थोड़ा समझें, उनके जो मुख्य विचार थे उनको पकड़ने की कोशिश करें।
और हाँ, उनकी जो विवादित विरासत है उस पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई आज के जमाने में हाइडेगर को पढ़ना या समझना क्यों जरूरी हो सकता है।
हाँ जी, तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले ये समझते हैं कि वो किस दौर में सोच रहे थे, माहौल कैसा था उस वक्त।
देखिए, उनका जो जीवन काल है 1889 से 1976, ये यूरोप के लिए बहुत ही मतलब उथल पुथल वाला समय था। सोचिए, दो दो विश्व युद्ध।
हाँ, और नाजी जर्मनी का वो भयानक दौर।
बिल्कुल, उसका उदय, फिर पतन, फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ये सिर्फ राजनीतिक घटनाएं नहीं थी, ये इंसान के वजूद पर संकट का समय था, एक तरह का गहरा अंधेरा।
तो जाहिर है ऐसे माहौल में तो पुराने जवाब काम नहीं कर रहे होंगे, लोगों के मन में गहरे सवाल उठे होंगे।
निश्चित रूप से, पहले विश्वयुद्ध की तबाही ने तो सब हिला कर रख दिया था। पारंपरिक दर्शन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था इन सवालों के सामने। तभी वो एडमंड हुसर्ल जैसे विचारक आए, फिनोमेनोलॉजी यानी घटना विज्ञान लेकर।
अच्छा, ये फिनोमेनोलॉजी क्या थी?
इसका मूल आइडिया था कि चीजों को सीधे अनुभव करो जैसे वो तुम्हारे सामने प्रकट होती हैं, बिना किसी पहले से बनी धारणा के। इसी माहौल में वो शून्यवाद का डर भी था कि कहीं जीवन का कोई मतलब ही ना हो। तकनीक तेजी से बढ़ रही थी तो हर तरफ यही मंथन था कि भाई ये सब हो क्या रहा है, इसका अर्थ क्या है। हाइडेगर इसी सब के बीच सोच रहे थे।
और कौन से विचारक थे उस समय जिनके साथ उनका लेना देना रहा, मतलब किन से वो प्रभावित हुए या किन के साथ उनकी बहस हुई?
देखिए, उनकी सोच की जड़ों में तो अरस्तु, कांट, हेगल, किर्केगार्ड, नीचे, ये सब बड़े नाम थे। और उनके गुरु एडमंड हुसर्ल, उनका तो बहुत गहरा असर था।
हाँ, हुसल का नाम तो आता है उनके साथ।
बिल्कुल, और समकालीनों में देखें तो कार्ल जास्पर्स थे, जांपॉल सार्त्र थे, जिनसे बाद में उनकी काफी बहस भी हुई।
हन्ना एरेंट का भी नाम आता है, वो उनकी छात्राएं थी शायद।
हाँ, हन्ना एरेंट उनकी बहुत प्रतिभाशाली छात्रा थी और प्रेमिका भी। एक बहुत ही जटिल रिश्ता था उनका। और फिर वो लोग भी थे जो उनके कट्टर आलोचक थे, जैसे रुडोल्फ कार्नाब और तार्किक प्रत्यक्षवादी। तो माहौल काफी गर्म था।
उनके शुरुआती जीवन के बारे में भी कुछ बताइए। वो किसी छोटे शहर से थे शायद।
हाँ, जर्मनी के दक्षिण में एक छोटा सा कैथोलिक शहर है मैस्किर्च, वहां जन्म हुआ था। तो उनकी जड़ें उस ग्रामीण कैथोलिक संस्कृति में थीं।
अच्छा,
दिलचस्प बात यह है कि पहले वो पादरी बनना चाहते थे, धर्मशास्त्र पढ़ रहे थे।
अरे वाह, फिर दर्शन में कैसे आ गए?
बस मन खिंच गया, फ्राइबर्ग विश्वविद्यालय गए, वहां हुसर्ल के अंडर में पढ़ाई की। और शायद वो जो गांव का माहौल था और धर्म की शुरुआती पढ़ाई, उसने कहीं ना कहीं उनकी बात की सोच को, खासकर तकनीक को लेकर उनकी जो आलोचना थी, उसको शक्ल दी।
चलिए अब आते हैं उनके विचारों पर। वो सबसे बड़ा सवाल क्या था जो हाइडेगर ने उठाया?
उनका सबसे बुनियादी, सबसे गहरा सवाल था, होना क्या है, बीइंग, जिसे वो ज़ाइन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज का जो अस्तित्व है उसके होने का क्या मतलब है।
होना, ये तो बहुत ही मौलिक बात है।
हाँ, और उन्होंने कहा कि पूरा पश्चिमी दर्शन प्लेटो के जमाने से इसी सवाल को भूल गया है। वो बस अलग अलग चीजों को देखता रहा, ये कुर्सी, वो पेड़, ये इंसान, लेकिन इन सबके होने का जो आधार है, जो होना खुद है, उसको किसी ने पूछा ही नहीं।
ये तो ऐसा हुआ जैसे हम पत्तों को गिनते रहें और पेड़ को ही भूल जाएं।
क्या बात कही, बिल्कुल यही उनका पॉइंट था। और इसी होने के सवाल को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले इंसान के होने पर ध्यान दिया, मानव अस्तित्व पर, जिसे उन्होंने खास शब्द दिया, दाजाइन।
दाजाइन, हाँ, ये शब्द तो बहुत बार सुना है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये बस इंसान का फैंसी नाम है?
नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, डाजाइन का मतलब है वहां होना, बीइंग देयर। ये हमारे होने के उस खास तरीके को दिखाता है कि हम सिर्फ मौजूद नहीं हैं, बल्कि हमें अपने होने का पता है। हम अपने अस्तित्व की चिंता करते हैं। हमारा होना हमेशा हमारे लिए एक सवाल है, एक मुद्दा है।
अच्छा, मतलब ये जो चेतना है, अपने होने के बारे में जागरूक होना।
हाँ, ये सिर्फ चेतना नहीं, बल्कि दुनिया में हमारी पूरी मौजूदगी, हमारी स्थिति। हम दुनिया में हैं और हमें इसका एहसास है।
तो ये एहसास एक तरह का बोझ भी हुआ, शायद यहीं से वो फेंका जाना वाला आइडिया आता है।
बिल्कुल, गिवोर्फन हाइट या फेंका जाना, ये डाजाइन की एक सच्चाई है। मतलब ये कि हम सब इस दुनिया में किसी खास समय, खास जगह, खास समाज में बिना अपनी मर्जी के बस फेंक दिए गए हैं।
हमने तो चुना नहीं था कि कहाँ पैदा हों, कब पैदा हों।
हाँ, हम बस खुद को इन हालातों में पाते हैं। यही हमारी शुरुआत है, यही वो जमीन है जिस पर हमें खड़ा होना है।
ये तो थोड़ी लाचारी वाली बात लगती है। तो क्या हम बस हालात के गुलाम हैं? यहाँ शायद वो प्रामाणिकता बनाम अप्रामाणिकता वाली बात आती होगी।
एकदम सही। हाइडेगर कहते हैं कि इस फेंके जाने की हालत से दो रास्ते निकलते हैं। एक है अप्रामाणिक, इनऑथेंटिक रास्ता।
वो क्या है?
वो है रोजमर्रा की भागदौड़ में खो जाना। समाज क्या कहता है, लोग क्या करते हैं, बस उसी भीड़ में शामिल हो जाना, जिसे वो कहते हैं दस मैन, वे लोग। मतलब अपनी सुध-बुध खोकर बस वही करना जो सब करते हैं।
अच्छा, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, बस वही करते जाना।
हाँ, कह सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना। और दूसरा रास्ता है प्रामाणिक, ऑथेंटिक जीवन का।
वो कैसे जिया जाए? क्या कोई अंदर की असली आवाज सुननी है?
नहीं, हाइडेगर के लिए प्रामाणिकता का मतलब कोई छुपा हुआ असली मैं खोजना नहीं है, बल्कि अपनी फेंके जाने की स्थिति को, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और फिर साहस के साथ अपनी संभावनाओं को चुनना, अपनी जिम्मेदारी लेना।
और इसकी चाबी क्या है, कैसे करें ये?
उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी चाबी है मौत का सामना करना, मृत्यु की ओर होना, बीइंग टुवर्ड डेथ।
मौत का सामना, ये तो बड़ा निराशाजनक सा लगता है सुनने में।
हाँ, पहली बार में ऐसा ही लगता है, लेकिन हाइडेगर का कहना था कि ये निराशाजनक नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। जब हम पूरी तरह ये मान लेते हैं कि हमारा जीवन सीमित है, मौत आनी ही है, तब
क्या होता है?
तब हम रोजमर्रा की छोटी मोटी चिंताओं, दिखावे, सामाजिक दबावों से ऊपर उठ जाते हैं। हमें समझ आता है कि क्या चीज वाकई जरूरी है। ये एहसास हमें हिम्मत देता है कि हम अपनी जिंदगी को भीड़ से अलग, अपने तरीके से एक मतलब देकर जिएं।
ये तो सोचने वाली बात है कि अंत का एहसास ही हमें सही तरह से जीने की शुरुआत करा सकता है। अच्छा, और उनका एक और जरूरी विचार था, विश्व में होना, बीइंग इन द वर्ल्ड, ये क्या है?
हाँ, ये भी दर्शन की एक पुरानी सोच पर चोट है। पहले क्या मानते थे कि एक तरफ हमारा दिमाग है, सब्जेक्ट, और दूसरी तरफ ये बाहरी दुनिया है, ऑब्जेक्ट, दोनों अलग अलग।
हाँ, जिसे मैं यहाँ हूँ और वो टेबल वहाँ है।
बिल्कुल, हाइडेगर ने कहा नहीं, हमारा होना ऐसा नहीं है, हम दुनिया में हैं, रमे बसे हुए, जैसे मछली पानी में होती है, उसे पता भी नहीं चलता। हम चीजों को पहले सोचते नहीं, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उनसे जूझते हैं। हमारा पहला रिश्ता दुनिया से व्यवहारिक होता है, कामों के जरिए।
अच्छा, मतलब हम दुनिया को देखते नहीं, दुनिया में जीते हैं, काम करते हैं।
हाँ, आप हथौड़े के बारे में सोचते नहीं, उससे कील ठोकते हैं। यही है विश्व में होना।
और फिर बाद में उन्होंने भाषा को भी बहुत महत्व दिया।
जी हाँ, मैं बात के कामों में उनका ध्यान भाषा पर गया, और उन्होंने भाषा को सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं माना, उन्होंने कहा भाषा होने का घर है, हाउस ऑफ बीइंग।
होने का घर, इसका क्या मतलब?
मतलब ये कि भाषा सिर्फ दुनिया को बताती नहीं, बल्कि वो उस दुनिया को बनाती है जिसमें हम रहते हैं। हमारे सोचने का तरीका, हमारी समझ, सब कुछ भाषा के दायरे में ही होता है। भाषा के जरिए ही सच्चाई या होना हम तक पहुंचता है।
वाह, यानी भाषा ही हमारी हकीकत की खिड़की है
एक तरह से, और खिड़की का फ्रेम भी वही तय करती है।
चलिए अब उनकी कुछ मुख्य किताबों पर आते हैं। जाहिर है बीइंग एंड टाइम।
हाँ, साइन उन्ड साइट 1927, ये उनकी सबसे बड़ी, सबसे मशहूर किताब है। हालांकि वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे जैसा वो चाहते थे,
पर इसी ने सब बदल दिया।
बिल्कुल, इसी किताब ने दर्शन का फोकस वापस होने के सवाल पर ला दिया, और शुरुआत की डिजाइन यानी मानव अस्तित्व के विश्लेषण से। वो सारे बड़े आइडिया, फेंका जाना, प्रामाणिकता, मौत का बोध, दुनिया में होना, सब इसी में है। इसने जैसे दर्शन की हवाई बदल दी।
और फिर इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स 1935।
हाँ, ये उनके लेक्चर्स पर आधारित थी। इसमें वो दर्शन का वो सबसे हैरान करने वाला सवाल पूछते हैं, कुछ होने के बजाय शून्य क्यों नहीं है, मतलब कुछ है ही क्यों? और यहां से उनके बाद के विचारों की झलक मिलती है, जहां वो ये देखते हैं कि कैसे पश्चिमी सोच में होने का सवाल धीरे धीरे दब गया, छिप गया।
और तकनीक पर उनका वो निबंध द क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी 1954, वो तो आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगता है।
हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। उसमें हाइडेगर ने कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनें नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक खास तरीका है, एक नजरिया।
कैसा नजरिया?
एक ऐसा नजरिया जिसे उन्होंने एनफ्रेमिंग कहा। ये हर चीज को, चाहे वो नदी हो, जंगल हो, इंसान हो, सिर्फ एक संसाधन, रिसोर्स के तौर पर देखता है, एक स्टैंडिंग रिजर्व, बिस्टांड की तरह, जिसे हम कंट्रोल कर सकें, इस्तेमाल कर सकें।
मतलब हर चीज बस हमारे काम आने के लिए।
हाँ, सोचिए, हम नदी को बस बिजली बनाने का जरिया देखते हैं, जंगल को लकड़ी का गोदाम, और आजकल तो इंसानों को भी डेटा या कनेक्शन की तरह। हाइडेगर ने कहा यही वो खतरा है, ये नजरिया चीजों के असली सार को, उनके अपने होने को ढक देता है।
ये तो वाकई चिंता की बात है। उन्होंने मानवतावाद पर भी कुछ लिखा था?
जी, लेटर ऑन ह्यूमेनिज्म 1946, ये उन्होंने सार्तर के जवाब में लिखा था। सार्तर का कहना था कि इंसान पहले आता है, फिर वो खुद को बनाता है। हाइडेगर ने कहा ठीक है, पर सवाल और गहरा है, हम जिस भाषा और होने के माहौल में हैं, वो हमें कैसे बनाता है। उन्होंने पारंपरिक मानवतावाद पर सवाल उठाए और वहीं भाषा को होने का घर कहा। और कला के बारे में क्या सोचते थे वो?
हाँ,
द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट में उन्होंने कला पर विचार किया। वो मानते थे कि कला सिर्फ सुंदर चीज नहीं है, वो एक ऐसा जरिया है जिससे सत्य या होना अपने आप को जाहिर करता है। उन्होंने वैन गॉग की वो पेंटिंग है ना, किसान के जूते वाली,
हाँ, देख ली है,
उसका उदाहरण देकर समझाया कि कैसे एक कलाकृति अपने आप में एक पूरी दुनिया को, एक जीवन शैली को हमारे सामने खोल सकती है। तो ये तो उनके कुछ बड़े विचार हुए। अगर हम देखें कि वो अपने समय के बाकी विचारकों से कैसे अलग थे या जुड़े थे, देखिए, असर तो उन पर अरस्तू से लेके हुसरल तक का था, जैसा हमने कहा, और उन्होंने खुद भी बहुत लोगों को प्रभावित किया। सार्त्र, हन्ना एरेंट, गैडामर, हर्मेन्योटिक्स वाले, डेरिडा, डीकंस्ट्रक्शन वाले, लिस्ट बहुत लंबी है। कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी का शायद ही कोई कोना हो जो उनसे अछूता रहा हो।
पर उनकी आलोचना भी तो हुई, खासकर उनकी भाषा को लेकर। कहा जाता है कि वो बहुत मुश्किल लिखते थे।
हाँ, ये एक बड़ी आलोचना है। वो जो तार्किक प्रत्यक्षवादी थे, जैसे रुडोल्फ कारनाप, उन्होंने तो कहा कि हाइडेगर की बातें मेटाफिजिक्स की बेकार की अटकलें हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। भाषा इतनी जटिल और उलझी हुई है कि कुछ साफ समझ नहीं आता।
अच्छा,
और इसी बहस से वो दर्शन में कॉन्टिनेंटल और एनालिटिक वाली खाई और गहरी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि हाइडेगर जानबूझकर रहस्यमयी भाषा लिखते थे, तो कुछ मानते हैं कि उनके विचारों की गहराई के लिए ऐसी ही भाषा जरूरी थी।
तो उनकी विरासत और आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है, कैसे देखेंगे इसे?
देखिए, विरासत तो बहुत बड़ी है, पर उलझी हुई है। एक तरफ तो उनका असर जबरदस्त रहा है, दर्शन, साहित्य, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, आर्किटेक्चर, पर्यावरण, यहां तक कि AI रिसर्च में भी उनके आइडियाज इस्तेमाल होते हैं।
और खासकर तकनीक वाली बात।
हाँ, तकनीकी उनकी जो आलोचना है वो तो आज के डिजिटल युग, क्लाइमेट चेंज, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जमाने में जैसे भविष्यवाणी लगती है। और वो प्रामाणिकता, चिंता, एंग्स्ट, अर्थ की तलाश वाले सवाल, ये आज भी लोगों को छूते हैं।
लेकिन फिर वो दूसरा पहलू भी है, उनका नाजी अतीत।
हाँ, और ये उनकी विरासत का सबसे काला, सबसे मुश्किल हिस्सा है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो 1933-34 में नाजी पार्टी के मेंबर रहे, फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी बने उस दौरान। उनके कुछ भाषण और काम बहुत विवादास्पद रहे, और होलोकॉस्ट पर उनकी चुप्पी, ये सब बहुत गंभीर नैतिक सवाल खड़े करते हैं।
और इस पर बहस भी होती है कि क्या उनका दर्शन और उनकी राजनीति जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल, ये बहस आज तक चलती है। क्या उनके दर्शन में ही कुछ ऐसा था जिसने उन्हें नाजीवाद की तरफ खींचा, या दोनों अलग चीजें हैं?
और वो उनकी ब्लैक नोटबुक्स, निजी डायरियां जो बाद में छपी।
हाँ, उनके मरने के बाद जब वो ब्लैक नोटबुक्स छपी और उनमें कुछ साफ तौर पर यहूदी विरोधी बातें मिली, तो ये बहस और तेज हो गई कि भाई ये कनेक्शन कितना गहरा था। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, विद्वान आज भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं।
चलिए, उनके कुछ मशहूर कथन देखते हैं। एक जो अक्सर सुनने में आता है, हमारे विचारोत्तेजक समय में सबसे विचारोत्तेजक बात यह है कि हम अभी भी सोच नहीं रहे हैं।
हाँ, कितना सटीक लगता है आज भी। उनका इशारा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन का सैलाब है, भागदौड़ है, इसमें हम शायद असली सोच से दूर हो गए। मतलब रुक कर, ठहर कर, अस्तित्व के बुनियादी सवालों पर विचार करने से। जानते बहुत हैं पर सोचते कम हैं।
और वो भाषा वाले बात, भाषा होने का घर है, इसके घर में मनुष्य निवास करता है।
ये लेटर ऑन ह्यूमैनिज्म से है। ये याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ बोलने का टूल नहीं है, ये वो दुनिया है जिसमें हम जीते हैं, सोचते हैं, हमारी हकीकत भाषा में ही बनती है।
एक और गहरा सवाल, क्यों सत है बजाय इसके कि कुछ भी नहीं?
ये इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स की शुरुआत है। ये हमें रोजमर्रा से खींचकर एकदम बेसिक, सबसे बड़े आश्चर्य के सामने खड़ा कर देता है कि आखिर ये सब कुछ है ही क्यों। ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक बड़ी बात है।
और वो मृत्यु की ओर होना वाली बात, उसे अगर आसान शब्दों में समझे तो
उसका निचोड़ ये है कि अपनी मौत की सच्चाई को, अपनी सीमितता को हिम्मत से स्वीकार करना। ये हमें डराता नहीं बल्कि आजाद करता है। ये हमें फालतू की चिंताओं, दिखावे और दूसरों की राय से मुक्त करता है, ताकि हम उस पर ध्यान दे सकें जो वाकई जरूरी है। ये मौत का डर नहीं बल्कि जिंदगी को उसकी पूरी कीमत के साथ जीने का तरीका है।
ये तो उनके गंभीर विचार थे। उनके बारे में कुछ दिलचस्प, कम जानी पहचानी बातें भी हैं।
वो उनकी झोपड़ी वाली बात बड़ी मशहूर है। हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट में वो उनकी छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी, टॉटनाबर्ग में, एकदम सादी, ना बिजली ना पानी का नल। कहते हैं अपनी कई जरूरी किताबें उन्होंने वहीं लिखी। शायद वो उनके लिए शहर के शोर और विकर्षणों से दूर एक असली बुनियादी जिंदगी का प्रतीक था।
और हन्ना एरन के साथ उनके रिश्ते पर भी बहुत कुछ कहा सुना जाता है।
हाँ, वो एक बहुत ही असाधारण और तूफानी रिश्ता था। एरेंट उनकी बेहद प्रतिभाशाली यहूदी छात्रा थी, उनके बीच गहरा प्यार भी था और बौद्धिक रिश्ता भी। हाइडेगर के नाजी अतीत के बावजूद और एरेंट के अमेरिका जाने के बाद भी उनके बीच एक अजीब सा जटिल संवाद ताउम्र बना रहा। ये दर्शन और निजी जिंदगी के उलझाव का एक अनोखा केस है।
और ये भी सुना है कि वो तकनीक से इतने दूर रहते थे कि झोपड़ी में फोन तक नहीं लगवाया।
हाँ, मानते थे कि तकनीक सोचने में रुकावट डालती है। अक्सर वो पारंपरिक जर्मन किसानों वाले कपड़े पहनते थे। कहते थे कि मैंने किताबी दार्शनिकों से ज्यादा गांव के किसानों की समझ से सीखा है। ये सब चीजें उनके व्यक्तित्व की जटिलता दिखाती हैं।
तो आखिर में हाइडेगर की इस इतनी जटिल, प्रभावशाली और हाँ, विवादास्पद विरासत से हम क्या समझें, क्या लेकर जाएं?
शायद सबसे बड़ा सवाल जो हाइडेगर हमारे लिए छोड़ गए हैं वो यही है कि क्या हम किसी विचारक के गहरे, जरूरी विचारों को उसके उन कामों से अलग कर सकते हैं जिन्हें हम नैतिक रूप से गलत मानते हैं, या दोनों को साथ रखकर ही उसकी पूरी तस्वीर समझी जा सकती है।
ये तो मुश्किल सवाल है,
बहुत मुश्किल। और दूसरा, शायद आज के लिए ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि क्या हम इस भागती हुई टेक्नोलॉजी में डूबी दुनिया में उन बुनियादी सवालों को फिर से पूछने की हिम्मत कर सकते हैं जो हाइडेगर ने उठाए थे। होने का क्या मतलब है? एक सच्ची, प्रामाणिक जिंदगी क्या है? हम इस दुनिया से, तकनीक से कैसा रिश्ता बना रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन सवालों को ही भूलते जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं?
हाँ, हाइडेगर हमें चैन से बैठने नहीं देते। वो हमें सोचने पर, सवाल करने पर मजबूर करते हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी देन है, उनकी स्थायी प्रासंगिकता।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।